समाचार सेवा प्रभाग प्रस्तुत करता है कार्यक्रम आज सवेरे।
अरुण यह मधुमेह देश हमारा, जहां पहुंच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। बरसाती आंखों के बादल बनते जहां भरे करुणा जल, लहरें टकराती अनंत की पाकर जहां किनारा। अरुण यह मधुमेह देश हमारा, ये पंक्तियां हैं जयशंकर प्रसाद की। भारत एक ऐसा सुंदर और शांति प्रिय देश है जो अनजान लोगों को भी सहारा देता है। हमारी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत हमारा गर्व है और श्रोताओं, आज हम विश्व विरासत दिवस भी मना रहे हैं। इस उपलक्ष्य में आज देश के सभी संरक्षित स्मारकों में आपको निःशुल्क प्रवेश मिलेगा, तो इस अवसर को गंवाए बिना अपनी विरासत, अपनी धरोहर को देखने जरूर जाएं और साथ ही आज इसे सजोने का भी संकल्प लें। इसी के साथ ही आकाशवाणी एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर समाचार सेवा प्रभाग के कार्यक्रम आज सवेरे के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। आज की इस खूबसूरत सुबह में मैं आपके साथ हूं आकर्षता सिंह और मेरे साथ हैं मेरी को होस्ट शगुन चोपड़ा। शगुन, आपको भी मेरा नमस्कार।
नमस्कार आकर्षिता, गुड मॉर्निंग, गुड डे एवरीबॉडी, अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल आवर लिसनर्स। वेल, यू आर ट्यून्ड टू आकाशवाणी एफएम गोल्ड ऑन 100.1 मेगाहर्ट्ज एंड ऑल द आकाशवाणी नेटवर्क। वेल, दिस इज आवर डेली न्यूज मैगजीन प्रोग्राम आज सवेरे एंड वी विल बी गिविंग यू द लेटेस्ट नेशनल एंड इंटरनेशनल न्यूज। We'll be providing you Metro City updates and we'll explore today's history, which is 18th of April. And I can't go much further without telling you, sharing with you a quote. Well, life is like riding a bicycle. To keep your balance, you must keep moving. Well, life, Akarshita, is a fascinating journey filled with twists, turns and unexpected challenges. We too must keep moving forward despite obstacles. And this quote is by Albert Einstein, and there is a reason, listeners, why I'm sharing it with you. Well, more on that in the program, so make sure that you are tuned with us till the very end. We'll begin with the headlines first.
सर्वोच्च न्यायालय में कल वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 पर दूसरे दिन सुनवाई हुई। केंद्र सरकार ने शीर्ष न्यायालय को आश्वासन दिया है कि अगली सुनवाई तक इस अधिनियम के अंतर्गत वक्फ बोर्ड या केंद्रीय वक्फ परिषद में कोई नई नियुक्ति नहीं की जाएगी। मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति संजय कुमार और न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन की पीठ के समक्ष महाधिवक्ता तुषार मेहता ने कहा कि उपयोगकर्ता द्वारा वक्फ संपत्तियों सहित मौजूदा वक्फ संपत्तियों की स्थिति में फिलहाल कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। न्यायालय ने केंद्र को वक्फ अधिनियम 1995 में हाल ही में किए गए संशोधनों की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर 7 दिन के भीतर अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। इस मामले की सुनवाई अब 5 मई को होगी।
The Calcutta High Court has directed the formation of a 3-member committee for the identification and rehabilitation of people displaced by the violence which took place during the protests over the Waqf Act in Murshidabad district. The court said that the 3-member committee will consist of an official each from the National Human Rights Commission and the West Bengal Human Rights Commission, besides the member secretary of the State Legal Services Authority. They will have to submit their report by May 15, 2025. A division bench of Justices Sumen Sen and Raja Basu Chaudhary further said that the Central Armed Police Force, CAPF, will continue to stay in the affected areas of Murshidabad as per their earlier order on April 12.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में अपने आवास पर दाऊदी बोहरा समुदाय के सदस्यों के प्रतिनिधिमंडल के साथ बातचीत की। इस दौरान बोहरा समुदाय के सदस्यों ने वक्फ संशोधन अधिनियम लाने के लिए प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया। प्रधानमंत्री ने वक्फ संशोधन अधिनियम को लाने के पीछे वर्षों की मेहनत के बारे में बात की और कहा कि इस अधिनियम को लाने का प्रमुख कारण ये था कि प्रचलित प्रणाली से अधिकतर महिलाएं, विशेष रूप से विधवाएं, पीड़ित हैं।
Maharashtra government has announced that Hindi will be a compulsory third language from classes 1 to 5 in Marathi and English medium schools in line with the National Education Policy, NEP 2020. Currently, only Marathi and English are mandatory from classes 1 to 4 in these schools. A government resolution, or GR, issued by the State School Education Department on Wednesday outlines the phase-wise implementation of the new language curriculum beginning in the next academic year. According to the GR, Hindi will be introduced as a third compulsory language from class 1 to 5 starting 2025-26. The new syllabus will also be rolled out for class 1 in the same academic year.
आज विश्व विरासत दिवस है, इसे अंतर्राष्ट्रीय स्मारक और धरोहर स्थल दिवस भी कहा जाता है। इस वर्ष की थीम है विरासत स्थलों पर आपदा और संघर्ष का संकट। एक रिपोर्ट।
विश्व धरोहर सूची में पिछले कुछ वर्षों में भारत के ऐतिहासिक स्थलों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हुई है। जुलाई 2024 में असम के अहोम वंश की माउंट बरियल प्रणाली मोयदम्स को सांस्कृतिक विरासत के रूप में शामिल करना भारत के लिए एक गौरवपूर्ण उपलब्धि रही। विश्व धरोहर सूची में भारत के 43 स्थल हैं और यूनेस्को की संभावित सूची में देश के 62 और स्थल हैं। देश के स्थलों को सूचीबद्ध करने की यात्रा वर्ष 1983 में आगरा किले के साथ शुरू हुई। उसके बाद ताजमहल, अजंता और एलोरा की गुफाएं शामिल हुई। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
Wanted gangster Harpreet Singh, alias Happy Pasia, who reportedly plotted 14 terrorist attacks in Punjab, has been detained by Immigration and Customs Enforcement in the US. He was also wanted by India's premier anti-terror body, the National Investigation Agency, NIA. Earlier this year, NIA had announced a reward of 5 lakh rupees on Pasia over his alleged involvement in grenade attacks on a house in Chandigarh and police stations in Punjab.
IPL क्रिकेट में कल रात मुंबई इंडियंस ने सनराइजर्स हैदराबाद को 4 विकेट से हरा दिया। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में 163 रन के लक्ष्य के जवाब में मुंबई इंडियंस ने 18 ओवर और एक गेंद में 6 विकेट पर 166 रन बनाए। आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना पंजाब किंग्स से होगा। मैच बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा।
Well, Christians across the globe are observing Good Friday today, one of the most solemn and sacred days in the Christian calendar. Marking the crucifixion and death of Jesus Christ at Calvary, Good Friday is a day of mourning, reflection and spiritual devotion. In the face of ongoing global conflict and suffering, church leaders across continents are using this Good Friday as a moment to call for peace, reconciliation and justice. We have a report from our Kohima correspondent on how Nagaland is observing Good Friday today.
Nagaland is set to observe Good Friday with deep reverence and communal participation. The day will be marked by a blend of solemn religious observance and vibrant cultural expressions reflecting the state's rich Christian heritage. Churches throughout Nagaland will host special prayer services where the faithful will gather to seek forgiveness for their sins and express gratitude for Christ's sacrificial act. In the state capital Kohima, Catholic congregations will participate in processions carrying wooden crosses to symbolize the ultimate sacrifice of Jesus Christ.
My way of the cross, 2,000 years ago,
fasting is a significant aspect of Good Friday observance in Nagaland. Devout believers will engage in fasts ranging from 3 to 40 days, culminating in the celebration of Easter Sunday. This period of fasting is seen as a way to emulate Christ's sacrifice and to prepare spiritually for the joyous occasion of Easter. Overall, Good Friday in Nagaland will be a day of solemn reflection, communal worship and a reaffirmation of faith as the state's Christian community comes together to honor the sacrifice and love of Jesus Christ. As Christians worldwide bows their heads in prayer and remembrance, Good Friday continues to serve as a powerful reminder of sacrificial love, forgiveness, and the promise of new life, themes that remain as resonant today as they were over 2 millennia ago. This is Asunyu from Akashwani News, Kohima.
Well, on the occasion, Nagaland Chief Minister Nifiu Ryu extended a solemn message of faith and hope, calling on people to reflect on the true essence of the day and the profound sacrifice of Jesus Christ.
नौवें सिख गुरु, गुरु तेग बहादुर साहिब जी का आज प्रकाश पर्व है। इनका जन्म 1621 में अमृतसर में हुआ था। वे छठे गुरु श्री गुरु हरगोविंद साहिब जी के सबसे छोटे पुत्र थे। एक निर्भीक योद्धा के साथ ही वे आध्यात्मिक विद्वान और कवि भी थे। उनके प्रकाश पर्व के अवसर पर पंजाब में शबद कीर्तन का आयोजन किया जा रहा है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु गुरुद्वारों में मत्था टेकने और पवित्र गुरबानी सुनने के लिए जा रहे हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
हिंदुस्तान में औरंगजेब के शासन के दौरान हिंदुओं की धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा में बहादुरी और बलिदान के लिए गुरुजी को हिंद की चादर के रूप में जाना जाता है। उनका जीवन और शहादत धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा के लिए एक मिसाल है। आज गुरुजी के जन्म स्थान गुरुद्वारा गुरु के महल में श्री अखंड पाठ साहिब के भोग डाले जाएंगे। सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक श्री हरिमंदर साहिब, श्री अकाल तख्त साहिब और गुरुद्वारा बाबा अटल राय साहिब में गुरुओं से संबंधित अमूल्य आभूषण और अन्य चीजें श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए सुशोभित की जाएंगी।
वेल ऑल्सो एम्बेसडर ऑफ फ्रांस टू इंडिया डॉक्टर थियरी माथो पेड ओबीसेंस एट सचखंड श्री हरमंदिर साहिब इन अमृतसर। He listened to Gurbani Kirtan and also visited the community kitchen at Sri Guru Ramdas Ji Sarai. He said he is very impressed by the langar, which is community kitchen, served to about 1 lakh people every day here, which is the largest community kitchen in the world. The French ambassador said that he felt the vibes of spirituality while visiting the Golden Temple, one of the holiest places in India, and impressed by the spirit of Seva. Mr. Matho said it was very important for him to visit Amritsar. This was his first visit to Punjab after becoming the ambassador to India in 2023. Later, he was honored by the SGPC secretary and others with a golden model of Sri Harmandir Sahib. I also have one more update from sports. This is about hockey. Well, Indian women's hockey stalwart Vandana Kataria expressed her heartfelt gratitude to Prime Minister Narendra Modi after receiving a personal letter of appreciation on the occasion of her retirement from international hockey. In a social media post, Vandana said it was a proud moment for her to receive such recognition from the Prime Minister. She added that this affection and encouragement would always serve as a source of inspiration.
और अब समय है महानगरों से जुड़ी खबरों का, तो आइए जानते हैं चेन्नई से क्या खबरें हैं शगुन के पास।
Yes, Akarshita, beginning with Chennai here, SIFI Infinite Spaces has opened a data center with a total design capacity of 130 megawatt information technology load with 2,500 crore worth investment. Chief Minister M.K. Stalin inaugurated the facility at Siruseri. The facility has 26 megawatt capacity with the ability to scale in the subsequent phases over the next 5 years. Now, Akarshita will be giving the updates from Delhi.
Ji. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में यमुना नदी की वर्तमान स्थिति का आकलन करने के लिए समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। इस दौरान यमुना की सफाई और कायाकल्प के लिए भविष्य की योजनाओं पर चर्चा की गई। इस बैठक में नदी की सफाई के लिए एजेंसीवार कार्य योजना की समीक्षा भी की गई। यमुना नदी की सफाई से संबंधित सभी परियोजनाओं पर दिल्ली सरकार द्वारा 3,000 करोड़ रूपये से अधिक खर्च करने का अनुमान लगाया गया है। राजधानी में निजी स्कूलों की मनमानी और फीस बढ़ोतरी पर सरकार और हाईकोर्ट द्वारा की गई कार्रवाई की कल दिल्ली सरकार में शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने जानकारी दी। एक प्रेसवार्ता में श्री सूद ने बताया कि दिल्ली के इतिहास में पहली बार जिलाधिकारी स्तर की समिति बनाई गई है, जिससे बच्चों और अभिभावकों को बड़ी राहत मिली है। उन्होंने बताया कि दिल्ली सरकार ने 11 स्कूलों के खिलाफ नोटिस जारी की है। दिल्ली सरकार में गृह मंत्री आशीष सूद ने कल दिल्ली सचिवालय में शहरी विकास विभाग की बजट पश्चात कार्य योजना की समीक्षा की। श्री सूद ने बताया कि इस दौरान दिल्ली में शहरी परिवर्तन को गति देने के लिए प्रमुख पहलों और कार्यान्वयन रणनीतियों पर उपयोगी चर्चा हुई। दिल्ली विधानसभा की आगामी सत्र की कार्यवाही पूर्ण रूप से कागज मुक्त होगी, ये जानकारी कल दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने दी। श्री गुप्ता ने कहा कि दिल्ली विधानसभा में नेशनल ई विधान एप्लीकेशन नेवा क्रियान्वयन के अंतर्गत नवीनतम तकनीकी पर आधारित सॉफ्टवेयर और ऐप का प्रयोग किया जाएगा। उन्होंने बताया कि जुलाई में प्रस्तावित विधानसभा का सत्र पूरी तरह से कागज रहित होगा। वहीं जामिया मिलिया इस्लामिया में कल कुलपति प्रोफेसर मजहर आसिफ ने मनोविज्ञान विभाग में नवनिर्मित मानसिक स्वास्थ्य संवर्धन इकाई का उद्घाटन किया। मानसिक स्वास्थ्य संवर्धन इकाई की स्थापना नवंबर 2024 में हैदराबाद में आयोजित प्रथम राष्ट्रीय कल्याण सम्मेलन की सिफारिशों पर की गई है। भारतीय संविधान के लागू होने की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर वर्ष भर चलने वाले कार्यक्रमों की श्रृंखला में दिल्ली विश्वविद्यालय के अरबी भाषा विभाग द्वारा संविधान एट 75 नागरिकों के अधिकार एवं कर्तव्य विषय पर एक विशेष व्याख्यान का आयोजन किया गया। इस अवसर पर विश्वविद्यालय के विधि संकाय के सहायक प्रोफेसर डॉ. नरेंद्र नागरवाल ने कहा कि भारत का संविधान भारत की आत्मा है। उन्होंने कहा कि हमारा देश संविधान से चलता है, इसमें नागरिकों के न केवल मूलाधिकारों को बताया गया है बल्कि कर्तव्यों का भी विस्तार से उल्लेख है।
Now listeners, I'll be focusing on Bengaluru. Karnataka Chief Minister Siddaramaiah launched Anubhav Mandapa Baswa Sharana Festival in Bengaluru yesterday to promote the thinking of 12th century social reformer Basavanna and popularize Vachana literature of Sharanas. A chariot carrying the messages and philosophy of Jagat Jyoti Basaveshwara will traverse across the state. Speaking on the occasion, the Chief Minister said that Basavanna lived for the society and devoted his life for the social reforms, including social equity. He mentioned that Basavanna perceived Anubhav Mandapa, a parliamentary democracy model in 12th century itself, where issues were discussed threadbare by members and a majority decision was then taken. This can be termed as the world's first parliament here, where people of all religious denominations and castes had the rights to participate in the discussion. Very interesting to note it over here. Now, Kashita, over to you.
Aur ab Mumbai se khabrein. शहर के विस्तारित मेट्रो नेटवर्क के लिए मुंबई मेट्रो लाइन 7A कॉरिडोर पर काम कर रही टनल बोरिंग मशीन TBM दिशा ने कल भूमिगत सुरंग के एक महत्वपूर्ण हिस्से को पूरा करते हुए सफलता हासिल की। इस अवसर पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी उपस्थित रहे। मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि ये सफलता एक मील का पत्थर है और एक इंजीनियरिंग चमत्कार है। ये लाइन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को एक और मेट्रो कनेक्शन प्रदान करेगी और अन्य मेट्रो लाइनों के लिए इंटरचेंज भी प्रदान करेगी। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महाराष्ट्र प्रभारी रमेश चेनीथला ने कल कहा कि राज्य के सतारा जिले के महाबलेश्वर में पार्टी के सभी सांसदों, विधायकों और वरिष्ठ नेताओं का सम्मेलन आयोजित करने की योजना बनाई गई है। मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर यात्री अब टर्मिनल 2 पर मौजूदा द आर्ट बीट ऑफ न्यू इंडिया संग्रहालय में एक नई कला प्रदर्शनी के माध्यम से भारत की समृद्ध विरासत, नवाचार और सांस्कृतिक पहचान का एक नया प्रदर्शन देख सकते हैं। नवीनतम प्रदर्शनी का अनावरण विश्व विरासत दिवस समारोह के हिस्से के रूप में किया गया है। वहीं मध्य रेलवे ने गर्मी की छुट्टियों के दौरान मुंबई के प्रमुख स्टेशनों पर प्लेटफॉर्म टिकटों की बिक्री पर अस्थायी प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। प्लेटफॉर्म टिकटों की बिक्री पर प्रतिबंध आज से शुरू होकर 15 मई तक रहेगा। इस पहल का उद्देश्य आगामी गर्मी की छुट्टियों के दौरान प्लेटफॉर्मों पर भीड़भाड़ को कम करना और सुचारू आवाजाही सुनिश्चित करना है। प्रभावित स्टेशनों में छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, लोकमान्य तिलक टर्मिनस और कल्याण शामिल हैं।
Now, listeners, I'll be turning my attention to Hyderabad and giving you the update here. The Central Water Commission, CWC, has convened a crucial meeting, which is scheduled for 21st of this month in New Delhi, to address water yield concerns over the Godavari River allocations. The agenda focuses on resolving objections raised by Andhra Pradesh and Telangana regarding water allocations for projects initiated and proposed by the respective states. Following the submission of the Water Availability Assessment Study of the Godavari River by the CWC 2023, the Godavari River Management Board was asked to respond, while Andhra Pradesh has expressed some objections to the findings. As per the CWC's projections, water allocation for the erstwhile undivided Andhra Pradesh was pegged at 1,435,000 million cubic feet, slightly below the claim of 1,486,000 million cubic feet. With the yields from the regeneration sources considered, the availability will be about 1,500,000 million cubic feet. For the Polavaram project in Andhra Pradesh, the study estimated a net availability of 498,000 million cubic feet, marginally exceeding the project's requirement of 484,000 million cubic feet.
पश्चिम बंगाल पुलिस की अपर महानिदेशक सुप्रतिम सरकार ने बताया है कि पुलिस ने वक्फ से संबंधित आंदोलन के दौरान मुर्शिदाबाद के शमशेरगंज में हरगोबिंद दास और चंदन दास की हत्या के सिलसिले में इजामुल हक को गिरफ्तार किया है। और अब एक नजर आज के मौसम पर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज मौसम साफ रहेगा। अधिकतम तापमान 41 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। मुंबई और आसपास आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। न्यूनतम तापमान 24 और अधिकतम 33 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। वहीं कोलकाता में तेज हवाओं के साथ बारिश या गर्ज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। न्यूनतम तापमान 23 और अधिकतम 35 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया जा सकता है।
Yes, now talking about Chennai, it is expected to have a generally cloudy sky with light rain or drizzle. The minimum temperature was 26 degrees Celsius and maximum will be around 35 degrees. Bengaluru is expected to have a generally cloudy sky with light rain again. The minimum temperature was 20 degrees Celsius and maximum temperature will be around 33 degrees. Now talking about Hyderabad, it is expected to have a partly cloudy sky with haze. The temperature will hover between minimum of 25 degrees and a maximum of 39 degrees Celsius. And now, listeners, let's explore today's history. But first, talking about this particular day, 18 April. Well, every year, 18 April marks a significant day as we celebrate International Monument Day.
Shehar mein hoon main tere, aake mujhe mil to le, dena na tu kuch magar, aake mera dil to dule le jaana shehar mein.
धुन थोड़ी सी छूट रही है। फिर से सुन लेना।
शहर में हूँ मैं तेरे, आके मुझे।
जी, अगर आप हमारे शहर में हैं, तो अपने भी शहर में आप कहीं भी घूमने आज निकल सकते हैं, क्योंकि आज टिकटें फ्री रहेंगी। तो अपने शहर में घूमने जरूर निकले और भी लोगों को अपने शहर में आमंत्रित करें, बुलाए। तो आज आप जानते ही हैं कि आज विश्व विरासत दिवस है। इसे अंतर्राष्ट्रीय स्मारक और धरोहर स्थल दिवस भी कहा जाता है, क्योंकि आज के दिन हम अपनी देश की संस्कृति और विरासत को देखने जा सकते हैं और उस पर गौरवान्वित महसूस कर सकते हैं। वैसे तो हम हर दिनों करते हैं, पर आज कुछ स्पेशल है, क्योंकि फ्री का मजा ही कुछ और होता है। शगुन
जी, ट्रूली वेल, टुडेज एम, द एम ऑफ दिस पर्टिकुलर डे हियर एज यू वर टॉकिंग अबाउट इट, इट इज टू एनकरेज द लोकल कम्युनिटीज एंड इंडिविजुअल्स, वेल even throughout the world, to consider the importance of cultural heritage to their lives, to their identities and the communities altogether, and also, Akarshita, to promote awareness of its diversity and vulnerability and the efforts which are required to protect and conserve it. Well, originating from a decision at the 22nd UNESCO General Conference in 1983, the day emphasizes the cultural importance of construction and how they would have been built in earlier years, yet they still stand so high and tall. And Akarshita, there is a lot to learn about the history and significance of monuments. So I think if you have the fortune enough to go there and explore the monuments themselves, you should definitely go ahead, listeners, and have fun.
जी बिल्कुल। और क्योंकि अभी हम दिल्ली की बात कर रहे हैं, हम दिल्ली में रहते हैं, तो दिल्ली में तो इतनी ढेर सारी जगह हैं जहां पे आज आप जा सकते हैं, तो आज जरूर जाएं।
Yes.
और अब फिर कुछ बता देते हैं आज के दिन के बारे में कि ये दिवस सांस्कृतिक और प्राकृतिक धरोहर के सम्मान और संरक्षण के लिए प्रति वर्ष 18 अप्रैल को मनाया जाता है। हमारे सभी श्रोताओं को ये जानकर खुशी होगी कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने आज देश के सभी संरक्षित स्मारकों में निःशुल्क प्रवेश देने की घोषणा की है। इस पहल का उद्देश्य लोगों को देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के प्रति जागरूक और प्रेरित करना है, और हमें आशा है कि आज हमारे लिसनर्स जरूर जाएंगे कुछ न कुछ अच्छा देखने
एंड एक्सप्लोर द ब्यूटी ऑफ दीज मॉन्यूमेंट्स।
और आज हम इतिहास के पन्नों में भी जाते हैं और बात कर लेते हैं कि आज के दिन क्या क्या खास हुआ।
जी,
आज के दिन ही 1917 में गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन के लिए चंपारण का चयन किया था, और आज के दिन ही 1950 में विनोबा भावे ने आंध्र प्रदेश में भूदान आंदोलन शुरू किया था।
नाउ टॉकिंग अबाउट द ईयर 1980, जिम्बाब्वे अचीव्ड इंडिपेंडेंस फ्रॉम द यूनाइटेड किंगडम।
और आज के दिन ही 1991 में केरल को देश का पहला पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया गया था। और आज के दिन ही 1994 में वेस्टइंडीज के बल्लेबाज ब्रायन लारा ने 375 रन बनाकर टेस्ट मैच की एक पारी में सर्वाधिक रन बनाने का विश्व रिकॉर्ड बनाया था।
And now we'll talk about the personalities who are associated to today, which is 18th of April. Well, beginning with
आज हम बात कर रहे हैं सुधाकर पांडे की, हिंदी साहित्य की प्रमुख विधाओं के उत्कृष्ट लेखक और सुधारक। सुधाकर पांडे का जन्म वाराणसी में हुआ था। साहित्य की प्रमुख विधाओं के उत्कृष्ट लेखक पांडे जी की पहली कविता 1943 में तथा पहली कहानी 1944 में आज में प्रकाशित हुई थी। उनकी पहली काव्यकृति निहारिका वर्ष 1950 में आई थी। उनकी प्रमुख रचनाएं थी हिंदी साहित्य और साहित्यकार, सांझ सकारे गाता हूँ, प्रसाद काव्यकोश आदि।
Well, today we are also remembering, you remember listeners, I quoted Albert Einstein in the beginning. Well, today we are also remembering Albert Einstein. Well, theoretical physicist best known for developing the theory of relativity basically. And he made important contributions to quantum mechanics as well. His mass energy equivalence formula E equals to MC square, which arises from special relativity, has been called the world's most famous equation as well. And I would like to share another quote here, which will definitely simplify your lives, listeners. It is, if you can't explain it simply, you don't understand it well enough. Well, this is quoted by Albert Einstein here.
आज हिंदी सिनेमा की प्रसिद्ध अभिनेत्री ललिता पवार की जयंती है। उन्होंने अभिनय की यात्रा का 7 दशक लंबा सफर तय किया। मूक फिल्मों की मौन भाषा से लेकर बोलती फिल्मों के वाचाल जादू के दौर में उन्होंने देखा। भारतीय सिनेमा के परवान को उन्होंने खुद चढ़ते हुए देखा था और ललिता ने फिल्मी करियर की शुरुआत बाल कलाकार की तरह आर्यन फिल्म कंपनी के साथ की। भारतीय नारी का जीवन जीते हुए एक संजीदा कलाकार ललिता पवार सिनेमा को कई यादगार फिल्में दी। जंगली की सख्त माँ, श्री 420 की केला बेचने वाली, आनंद की संवेदनशील मातृ छवि और अनाड़ी की मिसेस डिसूजा सहित अनेक चरित्रों की जीवंत छवियों को कैसे भूला जा सकता है। रामानंद सागर द्वारा निर्मित रामायण धारावाहिक में मंथरा की भूमिका को सजीव भी ललिता पवार ने ही बनाया था। आइए सुनते हैं इसी धारावाहिक से उनका ये डायलॉग।
कई कई महाराज कौशल्या और सुमित्रा से अधिक तुम्हें प्यार करते हैं, इसलिए कौशल्या तुमसे जलती है। राम के राजा बनते ही वो तुमसे बदला लेगी। उस समय तुम्हारी मुस्कुराहट आंसुओं में बदल जाएगी, जब तुम्हें और तुम्हारे बेटे भरत को दर दर की ठोकरें खाने के लिए राजमहल से बाहर निकाल दिया जाएगा।
और शगुन, जब भी हम इनके कैरेक्टर की बात करते हैं तो हमें मंथरा याद आती है, और कहीं ना कहीं एक द्वेष, एक उसका भाव जरूर आ जाता है कि इनकी वजह से ही राम वनवास गए थे। और यही होता है एक एक्टर के बारे में कि वो कैसे अपने चरित्र को पूरा ऐसे जो है दर्शकों के सामने पेश करता है कि लोग रियल और रील में फर्क ही नहीं कर पाते।
कैन नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन द एक्टिंग एंड द रियल। ट्रू।
और ललिता पवार ने लगभग 600 फिल्मों में काम किया और शो मस्ट गो ऑन की भावना को जिया। उन्हें फिल्म फेयर पुरस्कार, सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
Well, let's remember a musician over here now, Bernard Edwards. Well, primarily, he has been working in the genre disco with musician Nile Rodgers, with whom he co-founded this band, Chic. And I was really confused while selecting a track, but I did the work and selected this particular track for you.
आज भारतीय सिनेमा की जानी मानी अभिनेत्री दुलारी की जयंती है। हिंदी सिनेमा में माँ का जिक्र होते ही दुर्गा खोटे, ललिता पवार, लीला चिटनिस और सुलोचना जैसी अभिनेत्रियों के चेहरे जहन में घूमने लगते हैं। इसी सूची में एक नाम है दुलारी का, जिन्हें आमतौर पर दर्शक एक सीधी साधी और गरीब फिल्मी माँ के तौर पर जानते हैं। दुलारी ने भी शुरुआती कुछ फिल्में बतौर हीरोइन और साइड हीरोइन की थी। 1941 में आई बॉम्बे टॉकीज की मशहूर फिल्म झूला दुलारी की पहली फिल्म थी। आइए सुनते हैं 1949 में आई फिल्म दुलारी से ये खूबसूरत नगमा, जिसमें उनके अभिनय को काफी सराहा गया।
ना जाने तुम कब आओगे, नजारे अपनी मस्तियां।
Well, today it's birthday of Poonam Dhillon, actress, and how can someone forget her film Noori and also Soni Mahiwal, well, Samundar also. And we have this track from her movie Noori for you.
Dil ki और श्रोताओं, अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का, तो अनुमति दीजिए आकर्षिता और शकुन को कार्यक्रम आज सवेरे यहीं पर समाप्त करने की। नमस्कार, नमस्कार।